نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم سورہ مومن آیت 69 سے اینڈ تک کریں گے، 85 تک یہ اپنی سورہ مکمل کر لیں گے ان شاء اللہ تعالی. ہم نے لاسٹ ٹائم اللہ کی نشانیوں کے اوپر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نشانیاں انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں یا ہمارے ارد گرد ہیں، اور ان نشانیوں میں ہم نے اپنے آپ میں بھی نشانیاں دیکھیں، انسان کے لائف سائیکل بھی دیکھا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے شروع کیا اور کدھر پہنچا دیا شیوخ تک انسانوں کو، اور کوئی اس تک پہنچتے ہیں اور کوئی پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور بہت سی اور نشانیاں دیکھیں، دن اور رات کی دیکھیں، اور انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر پھر بھی اس کا رویہ کیا ہوتا ہے جبکہ نشانیاں بکھری پڑی ہیں ہر طرف. تو اب یہاں سے لے کے 69 سے 76 تک ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں یہ آیت 69 ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھنے کا معنی کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ جب ترا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں سے دیکھنا، مطلب ہے غور نہیں کیا تم نے کن لوگوں کی طرف؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں. انا یصرفون، کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً تیسری دفعہ یہاں پہ اس صورت میں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیات کون کون سی ہوتی ہیں. ایک تو قرآن کی آیات ہے، اور ایک اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، وہ بھی آیات ہیں. یہ سب جو کائنات ہے یہ آیات سے بھری ہوئی ہے، اپنے آپ میں بھی، آسمان، زمین، دن اور رات، اور ہماری خوراک، اور ہمارا جینا مرنا، یہ سب آیات ہی تو ہیں. لیکن خاص طور پہ یہاں پہ کن آیات کی بات ہو رہی ہے؟ وہ آیات جو کہ قرآن کی ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ان آیات میں جو جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، یا تو ان آیات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور ماننے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ مان لیا تو پھر کچھ کرنا پڑے گا، زندگی بدلنی پڑے گی، اسی لیے جھگڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا یہاں پہ کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے، اب جتنی نشانیوں کی لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، کتنی بڑی اللہ کی نشانیاں یہ دیکھ کے پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اور پھر بھی جھگڑے کرتا ہے، تو انا یصرفون، کہاں سے وہ پھر آئے جاتے ہیں؟ پھر بھی ان کی مت کدھر ماری جاتی ہے؟ یعنی حق کے قریب پہنچ کے پھر محروم رہ جانا. آپ دیکھیں، اگر ان لوگوں کو دیکھیں، اس دور کے لحاظ سے دیکھیں، تو آخری نبی کا دور ان لوگوں کو نصیب ہوا. نبی کریم ان سب میں موجود تھے، ان کے شہر میں تھے، ان کی بستی میں تھے، اتنی بڑی نعمت ان کو ملی ہوئی تھی، وہی نازل ہوتی تھی ان کے سامنے، پھر بھی وہ محروم رہ گئے. تو کہاں سے پھر آئے جاتے ہیں؟ سوچتے نہیں ہیں کون ان کو ہٹا رہا ہے اس حق سے. اس کا مطلب ہے خود نہیں انسان پھرتا، اصل میں وہ پھرایا جاتا ہے. کون پھراتا ہے اس کو؟ کون راستے سے بھٹکا دیتا ہے؟ اس کا جو دشمن ہے شیطان. وہ انسان سمجھتا ہے میں بہت عقل مند ہوں، میں نے دوسرے کو ہرا دیا. لیکن اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی کوئی اللہ کی ذات کو اگر نہیں پہچانتا، اس کی ذات کے بارے میں شک کرتا ہے، اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، یا مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین نہیں کرتا، اللہ کی بات مانتا نہیں ہے، उसकी बात मानने में उसको दिक्कत होती है और उस पे वो बहसें करता है, तो कहां से फिराया जा रहा है, किधर बहक रहे हो? और झगड़े भी लोग इसीलिए करते हैं, मानना ना पड़े। अगर मान लिया तो फिर अमल ना किया तो लोग कहेंगे ये कैसा है, ये मानता भी और फिर अमल नहीं करता, तो कसूरवार ठहराएंगे ना। तो इसलिए मानो ही ना, बहसे करते जाओ। और मैंने आपको बताया था कि इवन मुसलमानों में आज कितने ही बहसे हैं जो साफ साफ अहकाम कुरान में दिए गए, शराब के बारे में, सूद के बारे में, हलाल हराम के बारे में, पर्दे के बारे में, आप देखिए आए दिन उनके ऊपर बहसें हो रही होती, हालांकि बहस की गुंजाइश कहाँ से आ गई, जो साफ अहकाम हैं उनके ऊपर बहसें। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के खातम नबीयीन है, उसके ऊपर भी बहसें हो रही हैं, जो ऐसे फिरके बन गए हैं जो उसके ऊपर बहस करते हैं और कहते हैं ये सही नहीं है। इनके बाद भी एक कोई नबी आया, मिर्ज़ा कादियानी, यानी अल्लाह की आयात जो बिल्कुल वाज़े हैं और इतनी निशानियां देख के भी कोई फिर जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो किधर गुमराही में जा पड़े। और ऐसे लोग अपने आप को बहुत अकलमंद समझते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमने मान लिया तो फिर तो हमने वही कह दिया ना जो सारे कह रहे हैं, इसलिए कुछ और ही अपना फलसफा निकाल लो ताकि मानना लोगों को पता तो चले हमारी अकल कितनी ज़्यादा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कुरान में बहस करते हुए सुना था, तो फरमाया तुमसे पहली उम्मतें भी इसी वजह से दबा हुई हैं कि उन्होंने अल्लाह की किताब के बाज हिस्सों को दूसरे हिस्सों से लड़ाया, हालांकि अल्लाह की किताब इस तौर पर नाजिल हुई है कि हर हिस्सा दूसरे को कन्फर्म करता है, तस्दीक करता है। तुम लोग कुरान के बाज हिस्सों को दूसरे हिस्सों के जरिए से तकजीब ना करो, अगर कुछ जानते हो तो कह दो, नहीं जानते तो उसके सुपुर्द कर दो जो आलिम हो। बहसें सारी खत्म ही हो जाती हैं अगर इंसान इस कुरान को सही समझ के और फिर उसके ऊपर स्टिक करे, सारी बहसें खत्म हो जाती हैं। यानी मसले ही तब शुरू होते हैं जब हम मनमानी तफसीरें करना चाहते हैं जो हमारा अपना दिल चाहता है। कुरान की तफसीर सबसे पहले कौन करता है? कुरान ही करता है। एक जगह की तफसीर आप देखना चाहेंगे ना, दूसरी जगह वैसी ही आयत आपको मिल जाएगी जो उसकी तस्दीक कर रही है। उसके बाद हदीस, उसके बाद सहाबा के आसार, उसको आसार कहते हैं, यानी जो सहाबा कराम किसे रिवायात हैं, जो उनकी ज़िंदगी से हमें अमल पता चलता है, जो उन्होंने फरमाया वो आसार हैं, तो उससे पता चलती है तफसीर। और बाकी खुद से अपनी तौर पे तफसीरें नहीं कर सकते कि अगर मैं चाहूँगी मैं ये आज मैं तफसीर शुरू कर देती हूँ, ऐसे नहीं हो सकता, कोई नहीं तफसीर बयान कर सकता। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, जो उस वक्त से चली आ रही है, वही तफसीर। हाँ ये है कि उसको आज के दौर में कैसे वो अप्लाई होती है, वही चीज़ वो बताया जा सकती है, मगर मन माने माने करना, जो दिल चाह रहा वो करना, तो उसी से फिर झगड़े पैदा होते। तो इस चीज़ को हमने पहले भी पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में झगड़ना कुफर है, कुफर है ये। लेकिन आप देखते हैं कि लोग बगैर नॉलेज के झगड़े कर रहे होते हैं, जबकि इल्म नहीं होता, लेकिन ऐसे शो करते हैं कि जो हमें सारा ही पता है। और कितने आम है ये झगड़े, कितने ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये झगड़े होते हैं, कितने टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के लोग झगड़ रहे होते हैं, कुरान पे ये मामूली बात नहीं है। एक दफा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर जो हैं, एक रोज़ दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आपने दो आदमियों को एक आयत में इख्तलाफ करते हुए सुना तो तशरीफ ले गए। उस वक़्त आपका चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो रहा था, फरमाया तुमसे पहले के लोग किताब में इख्तलाफ करने की वजह से हलाक हुए, ये हलाकत होती है कि कुरान में इख्तलाफ किया जाए, इसमें बहसें की जाएं, इसमें ऐसे नुक्ते निकाले जाएं, शोशे छोड़े जाएं। हाँ कोई सवाल करना चाहे समझने के लिए वो एक अलग बात है, अरे बहस ना करो, हमने ये मानते हैं, ये क्या बात हुई, ये तो कोई नहीं लॉजिक बनती, ये आज के वक्त में कहाँ से आ गया, ये कैसे आज अमल पैरा इस पे हो सकते हैं, लो जी सूद ही अगर ख़त्म कर दें मुल्क चलेंगे कैसे, ये तो आप अनोखी बातें करते हैं, ये तो आप कहाँ से ले आए हैं, ये कहाँ से आज चलेगा, ये तो इतनी पहले की बातें, उस वक्त होता होगा आज नहीं हो सकता। और उस वक्त औरतें हिजाब लेती थी क्योंकि उस वक्त वहाँ पे गर्मी थी, उनका कल्चर था, वो तो ऐसे ही करते थे, आज कहाँ से ये चीज़ें आ गई, आज हम कैसे इन पे चल सकते हैं, ये सारी क्या बातें हैं, इसमें बहसे ही हैं, इसमें झगड़े करना। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताब, वो लोग जिन्होंने झुटलाया किताब को। अब आप सोचोगे, एक तो वो लोग हैं ना जो, वो तो सबको पता है, जो किताब को मानते ही नहीं, वो तो झुटलाना है ही। लेकिन किताब को झुटलाना सिर्फ ये नहीं है कि कोई ये कहे अल्लाह की तरफ से नहीं है, मैं नहीं इसको मानती, किताब को झुटलाना ये भी है कि इसके अहकाम को झुटलाया जाए, कि इसके अहकाम को ना माना जाए, इसके अहकाम में झगड़े किए जाए और कहें कि हमने नहीं मानना ये। कि वो लोग जो इसको झुटलाते हैं किताब को, वह बीमा अरसलना भी ही रसुलना, और साथ उसके जो भेजा हमने, साथ इसके अपने रसूलों को, यानी जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा, क्या भेजा किताब के अलावा, और क्या यह चीज जो रसूल लेकर आए हैं, पिछले रसूल भी लेकर आए थे मौजे लेकर आए थे, तालीमात लेकर आए थे, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर आए किताब के अलावा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो क्या है, वो इस किताब के अलावा है ना, जिसको हम कहते हैं वही है गैर मतलू। एक है वही है मतलू, यानी जो वही तिलावत की जाती है वो है ये कुरान, ठीक है, और दूसरी हम कहते हैं वही है गैर मतलू, वो भी वही है लेकिन उसको हम गैर मतलू कहते हैं, यानी उसकी तिलावत नहीं की जाती, मतलू मीम ते लाम वाव, ठीक है, उसकी तिलावत नहीं की जाती और उसको हम कहते हैं हदीस। अब आज बाज मुसलमान माशाल्लाह, क्या उनको मुसलमान तो कहा ही नहीं जा सकता, कि जो कहते हैं कि हम हदीस को नहीं मानते, मुनकिरीन हदीस, आज वो इतने आम हो गए हैं और इस चीज को बहुत फैला भी रहे हैं। यहां पे साफ कहा गया वो जो किताब को नहीं मानते या किताब को झुठलाते हैं, और जिसके साथ हमने अपने रसूल को भेजा उसको झुटलाते हैं, यानी रसूल की तालीमात को, अहादीस को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो कोई मौजज़ा नहीं लेकर आए, आपकी तालीमात ही एक यानी वो चीज़ है जो किताब के अलावा है, तो उनके लिए क्या है, फसौफ़ यालमून, तो अनकरीब वो जान लेंगे। दो लफ्ज़ हैं ये, मगर कितनी सख्त बात है, अल्लाह ताला ने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, पता चल जाएगा इनको, जैसे किसी को डराने के लिए कहा जाता है ना, तुम देख लो ठहर जाओ ज़रा, फिर तुम्हें पता चलता है, अभी जल्दी ही उनको पता चल जाएगा, ये जान लेंगे कि इनका असल ठिकाना कौन सा है। क्योंकि जो देखें, जो हमें ये पता है, कुरान ही हमें कहता है वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु, जो कुछ रसूल तुम्हें देता है ले लो, वमा नहाकुम अनहु फंतहु, जो इससे वो मना करते हैं उससे रुक जाओ। तो इससे क्या पता चलता है, जो कुछ रसूल ने दिया है वो हदीस है, वो कुरान है, उसके ऊपर ईमान लाना, उसको मानना, ये हमारा ईमान है। क्योंकि जिसने उनकी हदीस नहीं मानी उसने कुरान का इनकार कर दिया, क्योंकि कुरान ही कहता है कि जो वो दे रहे हैं उसको लो, और कुरान ही यहां पर कहता है कि जिन्होंने झुटलाया किताब को भी और उसको भी जिसके साथ हमारे रसूलों को हमने भेजा। तो ये बात इन आयात को नोट कर लिया करें, और ऐसे लोग कोई भी बहस करें तो उनको ये दिखाएं कि कुरान क्या कहता है, कोई गुंजाइश नहीं बनती हदीस से इनकार की। ऐसे लोगों के लिए क्या है, इदिल अगलालु फी आनाकहिम, जब तौक होंगे इनकी गर्दनों में, इनको जल्दी पता चल जाएगा जब तौक इनकी गर्दनों में पड़े होंगे, वस्सलासिलु यसहबून, और जंजीरें वो घसीटे जाएंगे, कहाँ पे, ये एक बात है कि गर्दनों में तौक होंगे और जंजीरें होंगी, और यसहबून फिल हमीम, और वो घसीटे जाएंगे खोलते हुए पानी में, वो खोलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे। ये है इंसान का अंजाम इन द एंड, अगर वो ये काम करता है। ये बात बताई गई कि झगड़े अल्लाह की आयात में और झुटलाना, किताब का झुटलाना और जो रसूल लेकर आए उसका झुटलाना, जब इनकी गर्दनों में तौक पड़ जाएंगे, ये सजा मिलने वाली है। ये है वो जो बहसें करते थे, जो कुरान को झुटलाते थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को झुटलाया करते थे। तुम दुनिया में बड़े बनते थे ना, तुम दुनिया में समझते थे मैं बड़ी अकलमंद हूँ और मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ और मैं मुझे सब पता है। तो दुनिया में जो तकब्बुर के तौक पहने हुए थे ना, देखें जो भी सज़ा आखरत में मिलती है वो बिल्कुल रिलेटेड होती है, उसके मुताबिक होती है जो इंसान ने अमल किया होता है। दुनिया में जो इंसान तकब्बुर से अपनी गर्दन अकड़ाए रखता है, जैसे कि उसकी गर्दन में कोई लोहा पड़ा हुआ, इतनी अकड़ी हुई गर्दनें झुकती नहीं है ना, तो ये वहाँ पे भी ये जो शौक है गर्दन को सीधा रखने का और अकड़ाने का, ये वहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही तौक डाल दिए जाएंगे। अब नहीं झुकाते थे तो अब ये लो, तुम दुनिया में खुद को बड़ी चीज़ समझते थे ना, अब अल्लाह ने तुमको ऐसा ही कर दिया, अब नीचे देख ही नहीं सकते। तो सोचें दुनिया की जिंदगी से ऐसे इंसान ने क्या खरीदा, ये तौक। अल्लाह अकबर, क्या पाया उसने। और जंजीरें जिनसे चेन करके खोलते हुए पानी की तरफ खींचा जाएगा, खींचा कब जाता है इंसान को, खींचा कब जाता है, जब कोई कहीं किसी तरफ जाता नहीं है, या घसीटना, ये लफ्ज ज्यादा इसके लिए बेहतर है। खींचना तो फिर भी होता है कि किसी को पुल करके ले जाना, उसमें भी जिल्लत होती है, लेकिन एक है घसीटना, जब ये लफ्ज बोला जाता है ना, किसी को घसीटते हुए ले गए, ये सिर्फ लफ्ज बोलने से एक पिक्चर जहन में आती, कैसी आती है कि जैसे कोई जमीन पे पड़ा हुआ है, किसी तरफ नहीं जाना चाह रहा और उसको घसीट के ले जाया जा रहा, किस कदर जिल्लत होगी इसमें। दुनिया में तुम बड़े बनते थे ना, अल्लाह की आयतों के आगे बड़े बनते थे कि हमें बहुत समझ है, हमें बहुत पता है, हम आज जीत गए, आज हमने नहीं माना तो हम जीत गए, हमने आर्ग्यूमेंट दी, हमने दूसरों को चुप करा दिया। तो जब ये मुजरिमों की हैसियत से पकड़े हुए आएंगे और तौक इनकी गर्दनों में होंगे और ये घसीटे जा रहे होंगे, उस वक्त देखो कि क्या इज्जत रह जाएगी। और क्या होगा, ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ, फिर आग में वो झोंके जाएंगे। फिर इनका अंजाम क्या है, इनका ठिकाना क्या है, वो आग जिसका मैंने बताया, यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा ना, यदखलून नहीं आ रहा, अगर यदखलून का तो वो दाखिल किए जाएंगे, वो एक अलग चीज है। يُسْجَرُونَ, मैंने आपको बताया सजरा क्या होता है, किसी चीज का भरा हुआ होना, जैसे तंदूर को ईंधन के साथ भर के फिर खूब लकड़ियां इतनी डाली जाए फिर खूब भड़काया जाए, तो उसमें कितनी हरकत भी है, हरारत भी है, तो जहन्नम पहले से इतनी भरी हुई होगी, वहां जो इस्तराब होगा, बेचैनी होगी, चीखो पुकार होगी, उसमें ये भी झोंक दिए जाएंगे, ठूस दिए जाएंगे। आप खुद सोचे कि पहले फिर हमीम खोलते हुए पानी की तरफ ले जाया गया और उसके बाद फिर आग में, पहले हशर के मैदान का जो सारा टाइम है ना, जिसमें इंसान खड़ा रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा जो इंसान को जो चीज़ सताएगी वो है प्यास की शिद्दत। तो इसीलिए तो है ना कि हशर के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौज पे खड़े होंगे और अपने हाथों से अहले ईमान को पानी पिलाएंगे, तो उस वक़्त ये काफिर मुशरिक या बिदती लोग वो भी आएंगे पानी पीने के लिए हौज की तरफ, लेकिन उनको हटा दिया जाएगा। तो ये जहन्नमी जो हैं, इनको भी ये जब इतनी शदीद प्यास होगी कि सबसे पहले इनको ले जाके यहाँ पे हमीम के पर लेके जाया जाएगा और यहाँ का इनको पानी पिलाया जाएगा। आप खुद सोचें ये कहा जाता है कि बाज़ उलमा कहते हैं कि हमीम जो है वो जहन्नुम के अंदर ही एक जगह है, पीने का इनका घाट, और बाज़ कहते हैं नहीं, जहन्नुम से बाहर है, और वहां पे इनको ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर इनको जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। वल्लाहु आलम, लेकिन जो भी जगह वो होगी, आप खुद सोच लें, अगर वो जहन्नुम में है तो जहन्नुम की आग में ऐसा पानी होना जो इवेपोरेट ना हो, खुद सोचें, वो ये वाटर तो नहीं होगा H2O जिसको कहते हैं, क्योंकि ये पानी तो 100 डिग्रीज के ऊपर वैसे ही इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है। वो भाप बनने की बजाय वो लिक्विड फॉर्म में है, तो खुद सोचें, या तो वो कोई हो सकता है कोई मेटल है या कोई सख्त पत्थर है जिसको मेल्ट किया गया। इसी वजह से तो जब जहन्नमी उसको पीने की कोशिश करेगा तो पहले घूंट के साथ ही इसके मुंह का सारा गोश्त पोश गल सड़ के नीचे गिर जाएगा। लेकिन प्यास इतनी शदीद होगी कि उसको जब पेट में ले जाएगा तो सारी आंतें कट के पीठ के रास्ते कदमों में आ गिरेंगी। तो पीना भी उसका अजाब है। तब फिर उसको आग की तरफ ले जाया जाएगा, तो वहां पे जाके फिर जहन्नुम का अजाब, जो उसकी आग, उसमें फिर प्यास सताएगी, फिर भूख सताएगी, फिर वहां से ले जाया जाएगा इन पानियों की तरफ, जिनको पानी कहना, पानी तो हम कह रहे हैं, जो भी वो लिक्विड होगा। अल्लाह अल्लाह जितना मिनन्नार, अल्लाह ऐसे खानों से हम सबको महफूज रखे। आज दुनिया में इंसान ने अपनी लज्जत के लिए, अपनी तस्कीन के लिए कैसे कैसे ड्रिंक्स इजाद किए हुए हैं। पानी के अलावा ऐसे ऐसे बेशुमार ड्रिंक्स हैं। और गर्म पानी या नलके का पानी तो पीना ही पसंद नहीं करते, कहते हैं वो वाला पानी हो जो और बोतलों में आता है, जो बहुत साफ सुथरा होता है, या किसी चश्मे का पानी हो, या कोई ऐसा पानी हो। नलके का पानी भी नहीं हमने पीना, इसमें भी कोई पोल्यूशन होगी। और कहाँ ये खाने, खाने को मांगेंगे तो थोअर का दरख्त और कांटेदार घास, जो ना पेट में जाएगी तो भूख मिटाए ना मोटा करे, बल्कि और अजाब में इजाफा करेगी। तो ये खाना और पीना, गरम तो जो होगा सो होगा, जाहिर है इतना गरम तो होगा ही कि जितनी जहन्नुम गरम है, क्योंकि जहन्नुम के अंदर कोई खाना सस्टेन ही तब कर सकता है जबकि वो उतना ही गरम हो, वो जाहिर है इतना तो गरम होगा ही। लेकिन उसके अलावा इसके अंदर ये कांटेदार दरख्त, कांटेदार घास, थोहर जकूम जो कड़वाहट और जिसके कांटे होंगे, हम एक से दूसरे दिन कहते हैं कि यही खाना खाना पड़ गया, तो कहते हैं बोर हो गए, 2 दिन 3 दिन एक ही खाना खाना पड़ जाए, कहते हैं आप कुछ और डिफरेंट होना चाहिए। तो आग का अजाब तो है, उसके अलावा जो खाने और पीने का, जाहिर है वहां पे भूख और प्यास तो लगेगी, इंसान है, भूख प्यास तो साथ होगी ना, तो वो भूख प्यास का अजाब अलग, और ये खाने एक अजाब की फॉर्म है और पीना भी अजाब की फॉर्म है, तो क्या उस इंसान को रेस्ट मिलेगा। तो ये खौलते हुए पानियों की तरफ ले जाए जाएंगे, फिर जहन्नुम की तरफ लाए जाएंगे, फिर पानियों की तरफ ले जाए जाएंगे, फिर जहन्नुम की तरफ लाए जाएंगे, इसी तरह इनका ये फेरे लगते चले जाएंगे। और आजाद नहीं है, चेंड है, घसीटे जा रहे होंगे। तब तो ये बात मान लेंगे ना, तब तो मान जाओगे ना, तब तो कोई झगड़े नहीं करने आएंगे, तब तो नहीं कह सकोगे नहीं मानते, हमें नहीं ये बातें समझ आती, ये क्या बात हुई, वो क्या बात हुई। लेकिन तब मानने का क्या फायदा, अगर तब वो माना तो वो मानना क्या हुआ। सुम्मा कीला लहुम, फिर कहा जाएगा उनसे, अईना मा कुंतुम तुशरिकून, कहाँ है जिनको तुम शरीक ठहराते थे, वो कहाँ है जिनको तुम कहते थे कि ये अल्लाह के साथ शरीक है, जिनको जिनसे तुम उम्मीदें लगाते थे कि वो हमें आके छुड़ाएंगे, वो कहाँ है आज। ये क्यों कहा जाएगा उनको, इसलिए कि जहन्नुम का एक अजाब ये भी है कि वहां पे आग का अजाब तो है, उसके अलावा ये डांट डपट, उनको इस तरह से ऐसे उनको पूछा जाएगा, ऐसे उनको डांटा जाएगा, ये इटसेल्फ उनके लिए अजाब होगा। जैसे आप किसी जेल खाने का तस्वीर करें, किसी थाने का, जहाँ पे मुजरिमों को जब टॉर्चर किया जाता है तो फिर वो साथ साथ मारते हैं और साथ साथ कहते हैं किधर है तुम्हारे साथी, बताओ और सबूत बताओ, बताओ और करोगे ऐसे। यानी गालियां भी पड़ती हैं और डांटे भी पड़ती हैं और ये सब, तो वहां पे एक तो अजाब कि सूरह दुखान में आता है कि फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसको पकड़ लो और घसीटते हुए जहन्नुम के मिडल में ले जाओ, सेंटर में, और इसके सर पे खौलते हुए पानी का अजाब उंडेल दो। तो खौलता हुआ पानी पीना तो पड़ेगा, ऊपर भी अजाब डाला जाएगा, ऊपर भी पानी डाला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खौलता हुआ पानी काफिर के सर पे डाला जाएगा तो उसके सर में छेद करके जिस्म के अंदर तमाम अजा को जला देगा और ये अजा फिर पीठ के रास्ते निकल के इसके कदमों में आ गिरेंगे। क्यों सर पे क्यों डाला जाएगा? इसलिए कि ये सर में ही वो दिमाग था ना जिससे तू बड़ी बड़ी बातें बनाता था, जिसे तू बड़े मंसूबे बनाता था, साजिशें करता था, नहीं मानता था, इस अकल के घोड़े दौड़ाता था। तो रुक, ये लफ्ज आया दुख, चख अब, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, तू बहुत बड़ा इज्जतदार बना हुआ था ना, गालिब बना हुआ था, तू अपने आप को बड़ी चीज समझता था ना। अल्लाह ताला ऐसे खुराक से और ऐसे अजाबों से महफूज रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की खोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अगर शीशे का कोई ऐसा गोला, जैसे ये खोपड़ी है ना, ऐसा कोई गोला आसमान से ज़मीन की तरफ फेंका जाए तो आसमान से ज़मीन के दरमियान 500 साल के रास्ता है, मसाफत है, डिस्टेंस है, तो गोला रात होने से पहले पहले ज़मीन पर पहुँच जाएगा। यानी 500 साल का फासला 10-12 घंटे में तय कर लेगा, यही मतलब हुआ ना। लेकिन अगर जहन्नुम की जंजीर के सिरे से, जो चेन हैं जिनके अंदर इनको चेन किया जाएगा, उसके एक सिरे से एक गोला फेंका जाए तो उसकी इंतहा तक, गहराई तक पहुंचने में इसको 40 साल लगेंगे। यानी वहां से जो जंजीरें लटकी होंगी दोजख में, जिनसे इनको लटकाया जाएगा, चेन किया जाएगा, ने कितना ज्यादा फासला होगा। दोजख की गहराई आसमान और जमीन की मसाफत से हजारों गुना ज्यादा है इसका मतलब। ये तिर्मिजी की हदीस है। कहेंगे कहाँ है वो जिनको तुम शरीक ठहराते थे, मिन दून अल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़ छोड़ के भागते थे उनकी तरफ, वो कहाँ है? आलू वो जवाब देंगे। अब वो ये कब उनसे पूछा जा रहा है, जिस वक्त वो इतनी सख्त मुसीबत में है। कहेंगे दल्लू अन्ना, वो गुम हो गए हमसे, हमसे वो गायब हो गए, हमको कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो कहां नजर आएंगे, वो तो खुद पता नहीं कहां पड़े होंगे, वो हमसे खो गए, हमने जो इनसे उम्मीदें लगाई हुई थी वो तो पूरी हो ही नहीं सकी। बल लम नकुन नदउ मिन कबलु शैया, बल्कि हम तो पुकारा करते थे इससे पहले, नहीं हम पुकारा करते थे इससे पहले कुछ भी। यानी शिर्क का ही एक तो मतलब ये हो सकता है, शिर्क का इनकार कर देंगे कि हम तो शिर्क करते ही नहीं थे। दूसरा इसका मतलब क्या है कि हम किसी ऐसी चीज की इबादत नहीं करते थे जो हमें फायदा पहुंचा सकती या हम मेरी तकलीफ को दूर कर सकती, हमारी तो सारी इबादत ही बेफायदा थी, उसकी कोई हकीकत ही नहीं थी, हम तो पता नहीं क्या करते रहे। तो पहला माना क्या हुआ कि एक तो वो ये भी हो सकता है कि वो शिर्क का इनकार कर दें, जाहिर है वो जिस कदर तकलीफ और जितनी अजियत के अंदर हैं, उसके बाद तो इंसान की वैसे ही हाफजा ही नहीं रहता, उसका हाफजा क्या रहेगा, उसका दिमाग क्या रहेगा, वो तो इतना माऊफ हो चुका होगा, उसको तो कोई बात समझ ही नहीं आएगी। कभी कहेंगे कि हाँ वो वाकई वो बेकार ही थे जिनको हम पूछते रहे, कभी कहेंगे हम तो किसी की पूजा ही नहीं करते थे, जैसे इंसान की मत नहीं मारी जाती, हम तो किसी को जानते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ قرآن میں کیوں یہ آگ کا اور اس کا بتایا گیا، اور اسی لیے نہیں ہم قرآن پڑھتے، کیونکہ ہم تو بڑا گھبرا جاتے ہیں ایسی باتوں سے، اور ہم کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے عذابوں کا ذکر، اور بس اس میں تو اور کچھ ہے ہی نہیں، بس یہی جہنم کے ذکر ہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بات یہ ہے، اگر آپ گاڑی لے کر جا رہی ہیں، گاڑی میں کہیں جا رہی ہیں، آپ کو کوئی کہے کہ دیکھیں آپ اوور سپیڈنگ نہ کریں، آگے اتنا ایک گہرا گڑھا ہے کہ اس میں گاڑیاں الٹ جاتی ہیں اور لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور تباہی تباہی ہو جاتی ہے، آپ اپنی سپیڈ ذرا دھیان سے چلائیے گا، آپ وہاں پہنچ گئیں اور وہاں سے وہاں مڑ جائیے گا، اگر آپ نہیں مڑی تو آگے ایسی ایسی وہ کھائی ہے اور اس کا ایسا ایسا منظر ہے، تاکہ آپ اس طرف کو نہ جائیں اور اس سے بچ جائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنی بری بات ہے کہ یہ ہمیں ایسی باتیں بتا رہا ہے، اور ایک گڑھے کی بات بتا رہا ہے اور ایک کھائی کی بات بتا رہا ہے جو اتنی خوفناک ہے، کتنی بری بات ہے کہ اس نے ہمیں ڈرا دیا۔ اس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، بھلائی کی یا برائی کر دی؟ اس کی آپ شکر گزار ہوں گے یا یہ کہیں گے کہ کتنی بری بری باتیں بتا کے ہمیں ڈرانے لگا ہے، ہم تو مزے میں جا رہے تھے، اس نے ایسے ہی ہمیں ڈرا دیا۔ تو جب وہاں پہ گرو گے تو تبھی پھر سنبھلو گے۔ کوئی آپ کو اگر ڈرا رہا ہے یا کوئی آپ کو وارن کر رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈرانا تو اس میں کیا ہوا، کوئی آپ کو بتا رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو وہاں پہ گر نہیں جانا، تو آپ تو اس کے احسان مند ہو جاتے، شکر ہے اس نے ہمیں بتا دیا، نہیں تو واقعی ہماری تو سپیڈ ایسی تھی، ہم نے تو سیدھے وہیں چلے جانا تھا۔ کتنے مشکور ہوں گے پھر۔ کیوں ایسی بات ہے کہ قرآن میں جب یہ بتائی جاتی ہیں باتیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، لو یہ اس میں تو کیا آگ کی بس باتیں ہیں، عذابوں کی بس باتیں بتائی جاتی، ہمیں تو ان سے ڈر لگتا، تو ہماری تو یعنی زندگی میں کیوں تھوڑی بھی ذرا کہیں بے چینی، کہیں کڑواہٹ، یا ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی کیوں ٹپک جائے؟ فلمیں ڈراموں کے آگے تو آنسو بہا لیتے ہیں، وہی قرآن پڑھ کے نہ آنسو ٹپکے، ہماری دیکھیں ہماری تو زندگی میں ویسے ہی اتنی ٹینشن ہے، اب یہ اور قرآن پڑھ کے ہم ایک ٹینشن لے لیں۔ تو آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے، آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کا، کیونکہ جنت جہنم تو برحق ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بتا دیا، دیکھو اس راستے پہ اگر چلے نا تو اینڈ میں یہ ہے، تاکہ آپ اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر لیں، بریک لگا لیں، احتیاط کر لیں۔ وہ نہ بتاتا تو کیا کر سکتے تھے ہم؟ اب وہاں جا کے پتا چلتا تو ٹو لیٹ ہو چکا ہوتا۔ تو بجائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے، یا رب تو نے ہمیں دنیا میں راستہ دکھا دیا، اور اتنی تفصیل سے اس لیے بتایا، صرف آگ بھی بتائی جا سکتی تھی، تاکہ انسان واقعی اس کو محسوس کر سکے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی دنیا میں انگلی کا جل جانے کی طرح یہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر انگلی ذرا سی جل بھی گئی تو کوئی نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے، اس کو محسوس کرو، تاکہ انسان واقعی یہ اپنی ڈٹائی چھوڑ دے۔ سوچیں جب اتنی کھلی آیتیں بھی ہیں، پھر بھی نہیں ہم اپنی ڈٹائی چھوڑتے، پھر بھی ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ پھر اسی راستے پہ چلتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کھول کھول کے بیان کرتے تو بالکل ہی نہ سنتے ہم۔ یہ تو اس کا احسان ہے، اس نے اتنی کلیئر کٹ ہر چیز بتا دی، یہ بینات ہیں، کھلی کھلی باتیں ہیں، تو ہم تو ابھی بھی نہیں سنبھل رہے، نہ بتائی جاتی تو پھر کیا حال ہوتا، یا مبہم رکھی جاتی کہ ان کے مزاج پہ نہ کوئی اثر ہو جائے، کہیں ان کے موڈ نہ کہیں خراب ہو جائیں، ان کو کوئی ذرا سی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے ان سے بالکل چھپا کے رکھا جائے، تو وہ تو الٹا ہمارے لیے ہی مشکل ہوتی، ہم تو آج نہیں مان کے دے رہے تب کیا مانتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبر میں رہے نا، دیکھو ان کے کبر نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا، اکڑے رہے تھے نا دنیا میں، تو آپ دیکھیں کیسی ذلت ہے، جو کبر ہے، تکبر ہے، بڑا بننا، اسی وجہ سے بڑے بن بن کے بڑی بڑی باتیں ہیں، اور بڑی دیکھیں کوئی غریب لوگ بےچارے، یا جو ایسے لوگ ہیں جو کم پڑھے لکھے، یا بالکل جن کو نہیں کچھ پتا ہے، وہ کوئی زیادہ بحثیں نہیں کرتے، زیادہ بحثیں وہی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں پہ زنجیروں میں کھینچے جائیں گے तो वो जो अपने आप को इज्जतदार समझा करते थे, अपने बड़ाई के घमंड में रहते थे, अब देखो कैसे जिल्लत के तौक पहने हैं। जिन जो शोहरत याफ्ता थे, तो बड़ाई जो है इंसान को जेब नहीं देती, देखो कहाँ तक ले जाती है। क्योंकि इंसान जुर्रत करते करते, बड़ा बनते बनते फिर वहां तक पहुंच जाता है कि फिर वो अल्लाह की आयात के ऊपर भी जुर्रत करने लगता है। ये है एंड उसका। अब बताएं, अगर किसी की सारी जिंदगी वो बड़े कमाइयां करता रहा, सेविंग्स करता रहा, ऐशो आराम में रहा, रंग रलियां मनाता रहा, खुश गप्पियां करता रहा, दुनिया में मजे उड़ाता रहा, लेकिन अगर उसका एंड ये होना था तो कितना घाटे का सौदा है, कितना घाटा है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था, एक प्रैक्टिकल करने को कहा था, आपने गौर व फिक्र किया उस? वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी डॉट में देखा अपनी जिंदगी को? मुझे तो बहुत फायदा हुआ इससे। देखा उसमें आपने अपने खसारे, अपनी फायदे दुनिया के, अपनी खुशियां, अपने गम, अपने ये सब चीजें देखी उस डॉट के अंदर है सब कुछ, अपना बचपन, अपनी जवानी। ये जो मजे के 4 दिन है ना, ये तो बिल्कुल ही बेमाने लगेंगे आपको, जैसे ये तो कभी आए ही नहीं थे। जिस जो इंसान यहाँ पहुंच जाए, जिस जगह का ये जिक्र है, तो उसके लिए तो ऐसे ही होगा जैसे उसने कभी कोई खुशी देखी ही नहीं। जैसे एक ऐसे इंसान को जिसने दुनिया में जिंदगी भर एक भी गम ना देखा हो, एक भी गम, ये हदीस में आता है, एक भी गम ना देखा हो, जब उसको जहन्नम में एक गोता दिला के लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कैसी गुजरी, तो वो कहेगा मैंने तो कभी आज तक कोई खुशी देखी ही नहीं। सारी खुशियां जो दुनिया में वो खुश रहा, जो सारे मजे किए, उसको ऐसे एक एक गोते से रफू चक्कर हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कहाँ है वो, अब किधर है भाई जिनको तुम शरीक बनाते थे अल्लाह के? तो वो अब हसरतों से ये कह रहे हैं, वो तो खो ही गए हमसे, वो तो नहीं हमें मिल रहे, वो तो दुनिया में ही रह गए। भाई देखो, जिसके पीछे तुमने अपना वक्त बर्बाद किया, तुमने अपना माल लगाया, अब वो कहाँ है सारे? अब इसके हाथ में क्या रह गया? कुछ भी नहीं, ना वक्त वापसी का आ सकता है, ना माल आ सकता है, ना कोई और दुनिया की जो ऐशो आराम थे वो मिल सकते हैं वापस। अब खाली दामन है, ना कोई साथ देने वाला है, ना कोई बचाने वाला है, ना कोई आहें सुनने वाला है, ना कोई चीखों पुरकार सुनने वाला है, ना कोई दर्द बांटने वाला है। इसीलिए कहेंगे ना, दल्लू आना, गुम हो गए हमसे, हमने तो धोखा खा लिया, हम जब कोई बड़ा था ही नहीं, हमने ऐसे ही बड़ा समझा किसी को, किसी के पीछे लग गए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कदालिका युदिल्लुल्लाहुल कैफिरीन, इसी तरह अल्लाह ताला भटकाता है काफिरों को। तुमने अपनी दुनिया में गलत फैसले किए थे ना, कसूर तुम्हारा था, अल्लाह ताला ने तुमसे हक को कबूल करने की तौफीक ही छीन ली। फिर जब दिल स्याह हो जाते हैं तो फिर तौबा की तौफीक भी छिन जाती है। ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून फिल अर्द, ये सब इसलिए है कि तुम दुनिया में खुशियां मनाया करते थे, जमीन में तुम बड़े मस्त हुआ करते थे। ये मैंने आपको बताया कि तफराहून खुशी के मानों में आता है, लेकिन इसके बाद जब तमराहून आ जाए ना, तो इसका माना होता है, तफराहून का माना होता है कि बड़े मस्त थे, मगन थे, डूबे हुए थे, और तमराहून फिर अकड़ने का माना हो जाता है। तुम तो जमीन में बड़े अकड़ अकड़ के चला करते थे, बी गैरिल हक, हालांकि तुम्हारा कोई हक नहीं था, अल्लाह की नेमतें तुम्हें मिली हुई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम इनके ऊपर अकड़ो, लेकिन तुम ऐसे उनमें मस्त हो गए और ऐसे अकड़ने लगे, वह बिमा कुन तुम तमराहून, और तुम इतराते थे। ये दो उनके जुर्म बताए गए कि तुम दुनिया में जो कुछ तुम पे मिला था ना, जो कुछ तुम्हें मिला था उस पे तुम इतराते थे, तकब्बुर किया करते थे, बड़ी चीज समझते थे खुद को। इंसान किस चीज पे इतराता है? वैसे उसके पास है क्या जिस पे वो उतराता है? अल्लाह के कुछ भी उसका नहीं है, कुछ भी तो उसका नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो फिर हम इतराते किस चीज पे? घरों पे, गाड़ियों पे, पैसे पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने इल्म पे? कौन सी चीज अपनी है? कुछ भी तो अपना नहीं है। ये घर बार हम देखते हैं दुनिया में ही लोगों के लूट जाते हैं, ये हुस्न व जमाल जो है ये बुढ़ापे की झुरियां आ जाती हैं, या इंसान बीमार हो जाता है ये भी चला जाता है, दुनिया में ही अल्लाह ले लेता है। ये जो इल्म की वजह से इंसान बड़ा बन बन के अकड़ता है और बड़ा मस्त हो जाता है इसके अंदर, वो भी देखा है, जब बुढ़ापा आता है तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे बच्चा, अक्ल ही मारी जाती है उसकी। दुनिया में जो भी कुछ इंसान को मिला है, अगर वो पा के इंसान अपने रब को भूल जाता है, जैसे कारून भूल गया था, तो बजाय शुक्र अदा करने के, बजाय इंसान अल्लाह के आगे और झुक जाए, किसी भी नेमत को पाके जब इंसान मस्त हो जाता है उसमें ऐसा कि अल्लाह को ही भूल जाए, तो ये वो है कि बुरे मानों में फराहा। खुश होना बुरा नहीं है, आपको ये नेमत आपको मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के आगे और झुक जाएं, खुश हों, उसके ऊपर खुशी करें, कोई कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन ये नाहक खुश हुआ करते थे, यानी क्या मतलब हुआ नाहक खुश होने का? कि नेमत पाके अल्लाह को भूल जाते थे, और ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि इंसान नेमत पाए और फिर अल्लाह को याद रखे, ये कम लोग करते हैं। अक्सरियत का हाल क्या है, इधर नेमत मिली उधर अल्लाह को ही भूल गए, अब ना इबादत में दिल लगता है, ना नमाजों के लिए टाइम मिलता है, ना कुरान के लिए टाइम मिलता है, अब क्या करें, बिजी इतने हो गए। सबसे पहले नेमत मिलने के बाद हमारा हाल यही होता है कि अल्लाह ताला को पीछे कर देते हैं और नेमत में मगन हो जाते हैं, मस्त भी होते हैं और अकड़ते भी हैं। ये अकड़ना जो होता है ना वो सेकंड स्टेज होता है, पहले इतने मस्त हो जाते हैं उसमें, उसके बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता इतराना भी शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है, इठलाना शुरू हो जाता है कि मेरे पास ये चीज है। आप ये देख लें कि ये जहन्नुम में ले जाने वाली दो सिफात हैं, ये उनको कहा जाता है कि ये तुम्हें अजाब, जालिकुम, ये बात, यानी ये बात क्या, ये सजा जो है ये तुम्हें इस वजह से मिल रही है कि तुम जो जमीन में ना बड़े मस्त हुआ करते थे, तुम्हारी बड़ी मस्तियां थी, जो कुछ तुम्हें मिला था उसके ऊपर मस्त वही होता है जो बेचारा फकीर है, उसने क्या मस्त होना, जिसको नेमते मिलती हैं, तो जब नेमते मिली तो तुम तो उनको पा के ऐसे मगन हुए कि कुछ याद ही नहीं रहा कि अल्लाह का हक क्या है, इंसानों के हकूक क्या है, इतराने लग गए, दूसरों को हकीर समझने लग गए। आप देखिए इसकी मिसाल किसी और के लिए क्या, अपने लिए सबसे पहले हम ये सोचें, ये दो सिफात आज हमें अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, मगर क्या ये दो सिफात हम में तो नहीं है? बहुत सारी लड़कियां शादी से पहले बड़ी नमाजी, परहेजगार, दुआएं हो रही हैं, मतलब शादी हो जाए पेरेंट्स भी दुआएं कर रहे हैं, शादी का दिन आता है तो क्या हो, अब रिश्ता अच्छा मिल गया, एक नेमत है जिसके लिए इतनी दुआएं हो रही थी, फिर क्या होता है जब वो दिन आ जाता है तो क्या होता है? कुछ अल्लाह को याद करना होता है? कैसी मस्ती होती है और कैसा इतराना होता है, खास तौर पे अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए किसी, और उसके बाद फिर क्या होता है, अब वहां सेटल हो गए, अच्छा घर मिल गया, आराम मिल गया, सारा कुछ भूल गए, क्या दीन तो क्या वो, कुछ भी नहीं याद। इसी तरह लोग औलाद के लिए दुआएं करते हैं, जब अल्लाह ताला औलाद दे देता है सारे अल्लाह के वादे जो उससे किए थे वो भूल गए, सब दीन सब कुछ भूल गया, औलाद में ही ऐसे मस्त हो गए और ऐसे वो कि मेरे तो अब बच्चे हो गए और मैं तो इस तरह, और उसी के अंदर इतराना, और उसी के अंदर के अल्लाह ने बेटा दे दिया तो बस उसके अंदर ही बहुत फूल गए। आप देखते हैं या किसी के पास पैसा आ जाता है, जब एकदम पैसा आया, बिजनेस खूब चमक उठा, या हस्बैंड को प्रमोशन मिल गई, किसी ऊंचे ओहदे पे लग गए, या जॉब बहुत अच्छी मिल गई, बड़ा घर मिल गया। कोई भी नेमत को आप सोचें, पहले छोटे घर में थे, ठीक है, वो दो कमरे का था तो कोई बात नहीं, अब उसके अंदर ही साफ सफाई करके बैठ गए। अब जो ही बड़ा घर मिला या पैसा बहुत आ गया, अब उसके बाद शॉपिंग ही खत्म नहीं होती, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें? शॉपिंग जो इतनी करनी है, घर बड़ा है, उसको सजाना भी है और पैसा भी है, फिर इतराना, उसके बाद अपनी शोखियां दिखाना, लोगों को बुलाना और उनके सामने अपनी नुमाइश करना, ये सब क्या है? तो तुम जमीन में ना हक, तुम्हारा हक नहीं था ये चीज कौन सी तुम्हारी अपनी थी, और यहाँ कौन सी तुम्हारी अपनी किसी काबिलियत पे मिली हुई थी? कारून ने तो कहा था ना, मुझे तो मेरे अपनी मेहनत की वजह से मिला हुआ है, अक्सर लोग यही समझते हैं, हालांकि ये ना हक है, इतराना ना हक खुश होना है। तुम अपने आप को समझते रहे कि तुम्हारी वजह से मिला, तो ये जो तुम्हारी इतराहट थी और जो तुम्हारी मस्ती थी, इसकी वजह से आज तुम यहाँ पे पड़े हुए। लोग तो दुनिया में कहते हैं ना, अब हम तो इतने मसरूफ हो गए हैं, असल में अब तो हमें वक्त ही नहीं मिलता, हम क्या करें, हमारे मशगले ही इतने हैं, क्योंकि नेमतें जो इतनी ज्यादा हो गई, जितनी ज्यादा नेमतें हुई उतने होना क्या चाहिए था, तो देने वाला है उतना ही ज्यादा उसके आगे सर झुकता जाता, कि सर उठाने की नौबत ना आती, कैसे सर उठा सकते हैं, ऑलरेडी इतनी नेमतें मिली हुई हैं और हमने जो मांगा था वो मजीद हमारा रब हमें देता जा रहा है। तो ये नेमतें भी ना टेस्ट होती हैं, आजमाइश होती हैं। तो बजाय इंसान का सर झुकता जाए, झुकता जाए, झुकता जाए, इतना झुक जाए वो सर उठाने के भी काबिल ना रहे, उल्टा क्या होता है, सर उठता जाता है, उठता जाता है, उठता जाता है, और वो अकड़ जाता है बिल्कुल। आज की दुनिया में अगर देखें, रब की तरफ तवज्जो ना करने का सबसे ज्यादा सबब क्या है? हमारे पास नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि हम उनमें मसरूफ हैं, उनमें मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं कि हम इसके बाहर देखें कि आखरत क्या है, उसके लिए कोई फिक्र करनी है, उसकी कोई तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ हमें अपनी जिंदगी को में कुछ अमल लेकर आना है। कहते हैं फुर्सत ही नहीं, मसरूफियत इतनी है, क्या करें, मशगले इतने हमारे, हमें कहाँ टाइम है। और वो सारी मसरूफियात अगर आप देखें तो किसके गिर्द घूमती हैं, उन नेमतों के जो अल्लाह ताला ने दी हुई। जायजा लें जरा, सारी मसरूफियात उन्हीं के गिर्द, अगर अल्लाह वो नेमतें ले ले, वो घर ही छीन ले तो क्या होगा, ना रहेगा घर, ना रहेगी मसरूफियत। अगर अल्लाह उन बच्चों को उठा ले, क्या रहेगा, कोई मसरूफियत नहीं। अगर अल्लाह ताला जो माल दौलत की रेल पेल है उसको उठा ले, क्या रहेगा, ना कोई शॉपिंग, ना कोई कुछ, फिर भी तो घर बैठोगे ना। लेकिन इंसान नेमतों में देखो कैसा मसरूफ हो जाता है, कि जिस रब ने दी भी है और सस्टेन भी कर रहा है उनको, यानी उनको उसने बरकरार रखा हुआ है, उसी से मुंह मोड़ लेते हैं और डरते नहीं है कि अगर उसने छीन लिया तो क्या होगा। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन ज़वाली निअमतिक, अल्लाह नेमतों के जवाल से बचाना, ये नेमतें आज मिली नहीं तो उनका जवाल भी हो सकता है। किस चीज पे फिर इंसान को मान है, और किस पे वो इतराता है, और किस में मस्त है, फिर ना हक ही है ना, ये हक तो नहीं था तुम्हें। ऐसा ना हो कि सारी उम्र इन्हीं खेल खिलौनों में बिता के और फिर खुशियां मना के और मस्तियां करके और यहां से चले जाए। और फिर वहां कहा जाए कि तुम तो नाहक इतराते थे। तो इन चीजों को जरूर जहन में रखें कि ये नाहक पे इंसान का खुशियां मनाना, मगन रहना, ये मस्तियां, ये एक्टिविटीज, ये मसरूफियात, ये जिन नेमतों के गिर्द घूम रही हैं उनमें मस्त रह जाना, ये नाहक है, ये तकब्बुर को जन्म देता है, ये इंसान का हक नहीं है, वो बड़ा नहीं बन सकता इन पे, वो इन में मसरूफ रह के अल्लाह को नहीं भूल सकता। اور خاص طور پہ یہاں پہ جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے، جو اس کی آیات میں جدال کر کے، جو رسول کی مخالفت کر کے، کتاب میں جھگڑے کر کے، پھر بھی وہ اتراتا پھر رہا ہے، پھر بھی وہ شوخیاں مار رہا ہے، پھر وہ اپنے بھٹک جانے پہ مطمئن ہے، خوش ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے خوش ہے، تو یہ ناحق ہے، یہ خوشی ناحق ہے، پھر یہی اس کو وہاں تک پہنچا دے گی جس آگ کا ذکر ہے۔ پھر کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں۔ کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 ہیں۔ تو کہا جائے گا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں۔ فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ دیکھو، یہ ہے تکبر کا انجام، تمہارے تکبر نے یہاں پہنچایا تمہیں۔ تو جہنم کے دروازوں کا ذکر ہم سورہ حجر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہر دروازے کے لیے نا لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کس نے کس دروازے میں سے جانا ہے۔ جیسے ایئرپورٹ پہ گیٹس ہوتے ہیں، کون کس گیٹ سے جائے گا تو کس جہاز میں بیٹھے گا، تو گیٹ کے آپ کو نمبر دے دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے اس گیٹ سے آپ نے جانا ہے، یہاں سے انٹر ہونا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ گیٹس ہیں، ان گیٹس میں سے لوگ جائیں گے اور اپنے اپنے طبقے میں جائیں گے، اپنے اپنے درجے میں جائیں گے، کیونکہ جہنم کے بھی درجے ہیں، ہر ایک درجے کا عذاب مختلف ہے، تو یہ اپنے اپنے درجے میں اس طرح سے پہنچیں گے، تقسیم شدہ لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا خالدین فیہا، یہ اعلان ہوگا ان کے لیے، چلو داخل ہو اب جہنم کے دروازے میں، ہمیشہ رہنا ہے اب تم کو اس میں، یعنی یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اس کے بعد کبھی یہاں سے نہیں نکلو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسے کسی مجرم کو کال کوٹھڑی میں داخل کیا جا رہا ہو، وہ آخری دفعہ آسمان کی طرف دیکھے، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھنا، کبھی بھی نہیں۔ تو ان کا بھی یہ آخری دن ہوگا عذاب کے بغیر، اس کے بعد تو عذاب ہی عذاب سہنا ہے۔ سوچیں، یہ اعلان ہی ان کے لیے کہ ہمیشہ تمہیں یہاں پہ رہنا ہے، یہ اعلان ان کے لیے کتنا تکلیف دے ہوگا، غم کا کیا عالم ہوگا کہ یہاں سے اب کبھی نکلنا ہی نہیں ہے، کیا حالت ہوگی ان کی، دنیا میں کوئی جل جائے یا کسی شدید تکلیف میں ہو، اس کی انتہا کیا ہوتی ہے، تکلیف کی انتہا، بہت انتہائی زیادہ تکلیف ہو جائے کسی کو تو کیا ہو جاتا ہے، انتہائی زیادہ جل جائے، کہتے ہیں کتنے پرسنٹ برنز ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، موت، مر ہی جاتا ہے وہ، اس کی جان چھٹ جاتی ہے۔ یہاں تو موت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے وہ حدیث بتائی تھی نا کہ جنت اور جہنم میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو اس وقت موت کو لایا جائے گا، اور کس شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں، جنت اور جہنم کے درمیان، پھر جنت والوں کو پکارا جائے گا اور جہنم والوں کو پکارا جائے گا، سب متوجہ ہو جائیں گے، اس کے بعد اس موت کے مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب موت کو بھی موت آ گئی، اب جنت والوں کو کہا جائے گا اب تمہیں کبھی موت نہیں آنی، اور جہنم والوں کو کہا جائے گا اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب اگر موت ہوتی تو جنت والے اتنے خوش ہوں گے اپنی نعمتوں میں، اور اب ان کو یہ خوشی جب مل جائے گی نا کہ اب کبھی موت ہی نہیں آنی، تو اگر موت ہوتی تو وہ مر جاتے خوشی سے، اور جہنم والے اس قدر غمگین ہوں گے، یہاں پہ تو چھوٹی سی دنیا کی کوئی ایسی بات سن لے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، مر جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، تو یہ تو اتنا بڑا ان کے لیے ایک دھماکہ ہوگا کہ موت کو ہی موت آ گئی، اب ہمیں کبھی موت ہی نہیں آنی، کہ اگر موت ہوتی تو وہ مر جاتے، موت ہی ذبح ہو چکی، یعنی اب اذیت ہی اذیت ہے، اب اینڈ نہیں ہے، خالدین فیہا یہ بتا رہا ہے کہ اب اینڈ کبھی بھی نہیں ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، یعنی اس انجام پہ تم کیوں پہنچے، اس لیے کہ تکبر تمہارے اندر تھا، تم خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، لوگوں کو حقیر جانتے تھے، اللہ کی آیات میں جھگڑتے تھے، انٹالریبل چیز ہے تکبر. اور اس کو یعنی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر, یعنی اتنا معمولی, رائی کا دانا بہت چھوٹا ہوتا ہے, اتنا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اب آپ بتائیں کہ جو تکبر ہمارے دلوں میں بھرے ہیں وہ ہمیں کیا جنت تک پہنچا سکتے ہیں؟ خود کو کسی فیلڈ میں بھی بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا, خود کو بڑی چیز سمجھنا, چاہے علم کے میدان میں, علم کا تکبر جو ہوتا ہے نا سب سے برا یہ تکبر ہے. پھر یہی انسان کی زبانیں بھی کھولتا ہے, یہ جو جھگڑے انسان کرتا ہے نا قرآن میں, یا کریٹیسائز کرتا ہے اللہ کی آیات کو اور اس میں زبان چلاتا ہے, یہ علم کا تکبر ہے نا. کیونکہ جب تکبر دل میں ہوگا تبھی انسان کہے گا نا مجھے سارا کچھ آتا ہے, چلو چلو جاؤ اپنا کام کرو, ہمیں پتہ ہے سب, یہ تکبر ہے. کئی لوگ کسی سے علم سیکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہمیں خود ہی اتنا آتا ہے, میں کیوں سیکھوں کسی سے, اس کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. حالانکہ انسان ساری زندگی, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی قل ربی زدنی علما, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما, زیادہ کر میرے علم کو, حالانکہ ان کے پاس تو اتنا علم تھا, پھر بھی کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں, جب ان کے لیے گنجائش تھی کہ علم اور ان کا بڑھتا رہے تو ہمارے پاس کیا علم ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں, اچھا ہم اس سے کیوں سیکھیں, ہمیں خود ہی اتنا آتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے سیکھنے کی, اب میں اس سے سیکھوں. اور سیکھنے کو اپنے لیے کوئی تھوڑا استاد بن جائے, کوئی تھوڑا گروپ انچارج بن جائے, کوئی تو بڑا کوئی ٹیچر بن جائے, تو وہ سوچتا ہے اب میں کیوں سیکھوں, میری تو بے عزتی ہو جائے گی, لوگ کہیں گے اس کو یہ نہیں آتا, میں تو نہیں سیکھوں گی, اب میں تو خود ہی ٹیچر ہوں. تو اپنے علم پہ فخر کرنا, دوسروں میں اپنے آپ کو بڑا نمایاں کرنا, دوسروں کی برائیاں دیکھنا ہر وقت اور اپنی ہر وقت خوبیاں نظر آنا, یہ سارے تکبر ہی تو ہیں. دوسروں سے اونچا ہو کے بیٹھنا, یہ سب انسان کی آواز سے, اس کے لہجے سے, اس کی چال ڈھال سے, اس کے یہ آپ جو لکھتے ہیں یہاں پہ یہ ای میلز اور یہ جو آپ یہ کرتے ہیں یہاں پہ کمنٹ لکھتے ہیں, کئی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس بندے میں اپنی بڑائی کا احساس ہے کہ میں کوئی چیز ہوں. یہ جو تکبر ہے انسان کو ایسا لے ڈوبتا ہے. اور سورہ نحل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہ لا یحب المتکبرین, بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر اللہ کی چادر ہے, وہ بڑا ہے اور اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ بڑا بنے, انسانوں کو زیب نہیں دیتا. وہ کس چیز پہ تکبر کرتے ہیں؟ علم اب اللہ تعالیٰ دماغ ہی خراب کر دے کسی کا. مجھے پتا چلا پچھلے دنوں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اور ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی ساری میموری لوز ہو گئی. اور میموری لوز کے اندر جو سب سے زیادہ چیز جو لوز ہوئی, باقی سب چیزیں تو اس کو یاد تھی, قرآن اس کی میموری سے ختم ہو گیا, جو حفظ تھا اس کو وہ سب وائپ آؤٹ ہو گیا. تو کس چیز کا تکبر انسان؟ قیامت کے دن متکبرین چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے تاکہ ان کی ذلت نظر آئے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. ہم کبھی نوکروں کو یا کبھی ایسے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں, کبھی نظر آ جائیں یا کبھی اوف اور ایسے کر کے کبھی منہ بناتے ہیں, کبھی ایسے جیسچرز دیتے ہیں, آپ دیکھتے نہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کسی کے رنگ کے اوپر, کبھی کسی کی شکل کے اوپر, کبھی کسی کے مالی سٹیٹس کے اوپر, کبھی کسی کے کم پڑھے لکھے ہونے کے اوپر ہم ایسے ناک منہ چڑھاتے ہیں, تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے, کیوں چڑھا رہے ہوتے ہیں؟ اور اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے برابر نہیں سمجھ رہے ہوتے, ان سے اوپر بڑی چیز سمجھتے ہیں. کہاں ہم اور کہاں یہ, یہ تکبر نہیں تو اور کیا. کبھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کونے میں تکبر چھپا بیٹھا ہے, بس میرے ہاتھ میں ہر چیز رہے, میں بڑی بنی رہوں, میری ویلیو رہے, باقی سب میرے انڈر ہی رہے تو ہے, یہ میرے برابر نہ آئے. کیونکہ क्यों आप ये सोचते मेरे बराबर ना है? क्योंकि आपने अपने आप को अपने जहन में ऊपर रखा हुआ है, ऊपर के पेडिस्टल पे बिठाया हुआ है, इसीलिए आपको ये डर है ना मेरे बराबर ना आ जाए। अल्लाह अकबर, तकबर जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। इसलिए हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने आप को देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, अच्छी तरह देखें, कहीं तकबर तो नहीं है। मैं क्यों उसको मनाऊं, मैं क्यों पहले बात करूं, मैं क्यों किसी को सलाम करूं, मैं और मैं झुक जाऊं, वो जो मैं है ना वही तो तकबर है। जहन्नुम के एक ऐसे कैद खाने की तरफ इनको हाँक के ले जाया जाएगा मुतकबिरीन को, जिसका नाम बोलस है। वहां इन पर आग मुसल्लत होगी और उनको अहले जहन्नुम की पीप पीने को दी जाएगी। ये आता है हदीस में। जब ये चूंटियों की शक्ल में हशर के दिन उठेंगे तो लोग उनको अपने पांवों के नीचे रौंदेंगे ताकि आज ये जलील हो, ये बड़े बनते थे ना, ये है तुम्हारी हैसियत। ये तकबर हमारे अंदर छुपा होता है, शैतान ने यही किया था और देखो कहां से कहां गिर गया। किधर फरिश्तों में बैठा होता था, किधर वो लानत ज़दा होके वहां से निकला, धुतकारा गया। उसने क्या कहा था, एक फिक्रा उसका याद रखे, उसने कहा था अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। जब हम किसी को अपने से गरीब समझ देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। किसी को अपने से कम शक्ल में देखते हैं तो क्या सोचते हैं, अना खैरुम मिन, मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूं ना, तो मैं इससे बेहतर हूं। किसी को अपने से कम पढ़ा लिखा देखते हैं, अना खैरुम मिन। मुंह से ना भी बोले रवैये से पता चलता है आपका अंदर क्या रहा होता है, दिल के अंदर अना खैरुम मिन। माल में ज्यादा ऊपर अपने आप को देख लिया तो अना खैरुम मिन। जब अपने से ऊपर किसी को देखते हैं तब तो नहीं दिल में आता अना खैरुम मिन। गरीब के वक्त में क्यों आता था, इसलिए कि वाकई आपके जहन में ये है बात, मैं बेहतर हूं इससे। हजरत उमर जब खलीफा थे तो पूरी दोपहर के वक्त में, सख्त गर्मी के वक्त में, किसी ने देखा भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा आप की तरफ दौड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं बैतुल माल का एक ऊंट है उसको तलाश करने के लिए जा रहा हूं, वो भाग गया। कहते आपको किसी को, उस गुलाम को दौड़ाना चाहिए था, आप किधर, कोई खलीफा दिखे उनकी तो सल्तनत ही कहां से कहां तक, आप खुद भागे जा रहे हैं किसी गुलाम को दौड़ाते। फरमाने लगे उमर से ज्यादा कौन गुलाम हो सकता है। जब किसी ने उनसे कहा ए उमर अल्लाह से डर, तो क्या किया था उन्होंने, अपना गाल जमीन पे रख दिया था और मट्टी में रगड़ने लगे अपने गाल को और फरमाने लगे वाकई उमर को अल्लाह से डरना चाहिए। हमें गुस्से के वक्त में कोई कह दे अल्लाह से डरो, क्या कहते हैं हम आगे से। तो सहाबा की जिंदगी देखे ना, कहीं तकबर नाम को भी नहीं नजर आता। हम कहते हैं हमने तकबर ना किया तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे। मैं अगर तकबर से ना रही, खुद ही अपने आप को बड़ा बनाया हुआ, अल्लाह की नजर में पता नहीं क्या है, इस चीज की नहीं फिक्र, पता नहीं अल्लाह ताला हमें कैसा देखता है, कहां पड़े हुए हम उसकी नजर में, उसकी परवाह नहीं है। ये परवाह है लोगों की नजर में ना मैं छोटी हो जाऊं, अगर मैंने ऐसे किया ना तो फिर यही मुझे ये समझेंगे, अगर मैंने ये किया तो मुझे ये समझेंगे, इसलिए मैं बड़ी बन बन के दिखाती हूं, वो नहीं बड़ी बन के दिखाती ताकि वो मुझे बड़ा समझे। अपने दिमाग में खुद ही को बड़ा बनाया हुआ। अल्लाह ताला हमें तकबर से बचा। अल्लाह ताला ने तो जगह जगह तकबर तोड़ा, इस्लाम है ही क्या, इस्लाम नाम ही किसका है, सरेंडर करना, अपनी बात को छोड़ दो, अल्लाह की बात कबूल कर लो। अल्लाह के मुकाबले में भी तकबर है, नहीं हमारी अकलें तो बहुत ज्यादा है, हम ज्यादा जो हम चीज समझते हैं ना, मेरी अकल में तो आई ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आता ये वाला हुक्म, नहीं मुझे समझ आए, मुझे तो नहीं समझ आती इसकी लॉजिक, لہٰذا میں نے ماننا ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبر، کہ میری عقل اتنی بڑی ہے، جب تک اس بڑی عقل میں نہ کوئی حکم آ گیا میں کیسے مانوں گی؟ صاف صاف سیدھا سیدھا یہ تکبر ہے۔ ورنہ اگر تکبر نہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں میری عقل کیا چیز ہے، اللہ کی آیات کے سامنے کیا حیثیت ہے اس کی؟ سمیع نہ واتا نہ، میں نے سن لیا بس، میں نے مان لیا۔ لیکن یہ بڑائیاں جو ہے نا دھری کی دھری رہ جائیں گی، ایک دفعہ موت کا جھٹکا آیا اس زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ کدھر رہی انسان کی بڑائی؟ جب لوگ مردے کے اوپر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کے منہ پہ پڑ رہی ہوتی ہے، اس کے جسم پہ پڑ رہی ہوتی ہے، کیا تکبر رہ گیا اس کا؟ خاک میں مل گیا سارا۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر جگہ جگہ پہ توڑا ہے، اسی لیے تو پانچ دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ تکبر کا علاج کر دیا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہو، تاکہ تمہیں یہ نہ خیال آئے کہ میں کر رہی ہوں، میں اللہ کے نام سے۔ کام ہو جائے تو کہو الحمدللہ، اس میں بھی اللہ کی تعریف کرو، اسی کا شکر کرو کہ ہو گیا، یہ نہیں کہ میں نے کر لیا، میں نے کمپلیٹ کیا، میں نے یہ کیا، میں نکال دی اللہ تعالیٰ نے۔ پتہ نہیں ہم بسم اللہ الحمدللہ بھی کہتے ہیں لیکن کیا سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں۔ آپ دیکھیں اس سورت میں فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا، فرعون کس چیز کا سمبل تھا؟ تکبر کا، بڑائی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کا انجام کیا کیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکا تھا۔ اس نے کہا میں خود ہی اتنی بڑی چیز ہوں، میں نے کیا ماننا۔ تو جو تکبر کرتا ہے نا وہ بڑا ہی جاہل ہے، جاہل اس لیے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہے، تو اس کی جہالت ہی ہے نا۔ تکبر کو ہم نے بہت باریکی سے پہچاننا ہے کہ ہمارے اندر کہاں تکبر ہے، اس کو میں نکالوں، تکبر نہیں آنے دینا۔ جو ہی اپنی کوئی اگر کوئی خوبی کوئی کہے بھی یا آپ کو نظر بھی آنے لگے، کوئی خیال بھی آ جائے، فوراً الحمدللہ، فوراً سبحان اللہ، یا اللہ پاک تو تو ہے، ہم بھلا کہاں سے پاک ہو گئے، میری کیا حیثیت ہے؟ تو نے موقع دے دیا، تو نے یہ کرنے کو مجھے قابل بنایا، تو نے یہ توفیق بخش دی تو میں نے کر لیا، میرا اپنا کیا ہے؟ تو نے یہ شکل دے دی تو میں کس چیز پہ اتنا ہوں؟ نہ دیتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ انہیں انسان بنا دیا، تو نے دماغ صحیح دے دیا۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا کہ اگر اللہ تعالیٰ عقل نہ سلامت دیتا تو کیا ہوتا، انسان ہوتے بھی تو کوئی پاگل خانے میں پڑے ہوتے۔ تو عقل کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ اگر بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں تو ہماری کیا کمال ہے، کیا بڑائی ہے؟ اس نے بٹھا دیا، اس نے صحت دے دی، اس نے سمجھ دے دی، اس نے یہ راستہ دکھا دیا، اس نے اتنی توفیق دے دی، یہ عقل کو سلامت رکھا، تو ادھر بیٹھے ہیں، تو کیا کمال ہے؟ کس چیز کا تکبر؟ چار لفظ اگر پڑھنے آ گئے تو کس چیز کا تکبر؟ چار چیزیں، چار باتیں کہنے آ گئیں، دو لفظ بولنے آ گئے۔ آج سے کچھ سال پہلے دیکھیں کیا آتا تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی بات کرتا تھا کسی مجلس میں ہمیں جواب ہی نہیں دینا آتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنا کیا کمال ہے، پھر بھی کسی کو چھوٹا سمجھنا، جن کو نہیں آتا ان کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، ان کو تو یہ بھی نہیں آتا، ان کو تو وہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ جو جہنم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم میں رہنے والے کون ہوں گے، اہل جہنم کون ہوں گے؟ ہر اکھڑ مزاج، بد خلق اور متکبر، یہ تین صفات ہیں جہنم والوں کی۔ اکھڑ مزاج، اکھڑا ہوا، ہر ٹائم کوئی بات بھی کرے تو اکھڑے ہی رہنا۔ بد خلق، ہم بد خلق ہو کے بڑے فخر کرتے ہیں، میں نے تو ایسی سنا دی اس کو، میں نے تو یہ کہہ دیا اس کو۔ بد خلق انسان جو ہے نا جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس کے پاس لوگ بیٹھنا نہ چاہیں کہ اس کو پاس بیٹھے تو کچھ سن کے ہی اٹھیں گے، اور متکبر، یہ ہیں جہنم میں جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اگر تکبر ہمارے اندر راہی کے دانے برابر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے. اپنی حیثیت جتنی زیادہ پہچانیں گے نا, اپنی اوقات جتنی یاد رکھیں گے کہ کیا ہیں نطفہ ہیں اور پھر علقہ ہیں اور مدغہ ہیں اور کیا بنے اور کیا اس رب نے کرم کیا تو آج یہاں بیٹھے ہیں, آج صحیح سلامت ہے. لیکن ہم خود کیا ہیں اور کیا ہو جانا ہے, اپنا سٹارٹ اور اپنا اینڈ دیکھ لیں گے نا. اسی مٹی میں وہ ایک بے عقل بے وقوع بدھو نے بھی جانا ہے اور ایک آئنسٹائن نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے, ایک بادشاہ نے بھی یہیں جانا ہے, اتنا مالدار اتنا بڑا حکمران اور فقیر نے بھی یہیں جانا ہے, ایک خوبصورت لڑکی نے بھی وہیں جانا ہے اور بدصورت نے بھی وہیں جانا ہے, امیر نے بھی وہیں جانا ہے غریب نے بھی وہیں جانا ہے, گورے نے بھی وہیں جانا ہے کالے نے بھی وہیں جانا ہے. تو پھر کیا تکبر ہے؟ وہ ڈاٹ یاد رکھیں اس کے اندر, اتنی چھوٹی سی لائف کے اندر, چار دن کی زندگی کے اندر کوئی چیز مل گئی تو اس کے اوپر بڑے بنے ہوئے, اس کو پھر شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے, اس میں ہی اپنے آپ میں اپنے آپ کو پھلا پھلا کے اوپر ہوا بھری ہوئی ہے. تو وہ ساری ہوا نکل جاتی ہے جب انسان مٹی میں جاتا ہے.